नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मलय नीरव जी। मलय जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद शशांक।
और अच्छी खबर आ रही है, लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सदी की शुरुआत की उन्होंने आज,
बहुत बढ़िया शुरुआत, खासकर उस झटके के बाद जिसमें विश्व वरीयता क्रम में वो पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गए थे।
जी, विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और बाकी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइन पर। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कुश मैनी को अल्पलाइन फार्मूला 1 टीम ने अपने रिजर्व ड्राइवर की सूची में शामिल किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मुकाबला बहुत आसान नहीं था। पहले दौर में चीनी ताइपे के सू लिंग यांग से वो पहला गेम हार गए थे 13-21 से। उसके बाद उन्होंने लगातार दो गेम जीतकर वापसी की। मलय जी,
जी देखिये, पहला सेट जब था तो लक्ष्य सेन वो हार गए और उसके बाद बैक टू बैक दो जीत उन्होंने हासिल की, और वो भी कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी उनका नहीं था। जो ली यांग सू जो हैं खिलाड़ी, वो बहुत ही मजबूत माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि लक्ष्य के लिए लक्ष्य भेद पाना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार जो लक्ष्य ने करके दिखाया है, खासकर तब जबकि BWF के अरीना पर भारत के खिलाड़ी बहुत दिनों बाद लौट रहे हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हों, चाहे प्रणोय हों, चाहे लक्ष्य हों, और ऐसे में एक जो आशाओं का दीपक हमेशा से टिमटिमाता रहा है लक्ष्य के रूप में, उसको बहुत झटका लगता अगर लक्ष्य मैच नहीं जीत पाते। तो जिस तरह से उन्होंने साहस का परिचय दिया, पहला गेम उन्होंने हारा 13-21 से हारे, उसके बाद 21-17, 21-15 और कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो लक्ष्य के बारे में आपने पहले भी जब उनको खेलते हुए, जब हम लोगों ने ओलंपिक्स में भी देखा या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा, तो ये देखा कि उनमें रिसिलियंस, दोबारा वापस आने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, चाहे वो पहला हार भी गए हों गेम, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्षमता उनके पास है और उसका पूरा सदुपयोग उन्होंने किया। और जैसा मैंने शुरू में कहा था शशांक जी, कि लक्ष्य सेन हमेशा से पिछले कई हफ्तों से टॉप 10 में रहे, बल्कि महीनों से टॉप 10 में रहे विश्व वरीयता क्रम में। अचानक जब नई विश्व वरीयता क्रम की नई सूची आई तो उसमें देखा गया कि वो 15वें स्थान पर चले गए, और कहाँ छठे पे थे, 10वें पे आए, 15वें पे चले गए, छठे से। तो बहुत ही जो ये उनके लिए एक डिमोरलाइजिंग, मनोबल गिराने वाली बात थी, उसको इन्होंने विन ओवर किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अभी हम में बहुत बैडमिंटन, अभी तो उम्र भी कम है और बहुत अच्छा खेलते भी हैं
जी। लेकिन प्रणय के एंड पे आज अच्छी खबर नहीं आई। HS प्रणय अपना जो है पहले दौर का मैच फ्रांस के टोमा जूनियर पेवोआ से लगातार गेम में 19-21, 16-21 से हार गए।
बिल्कुल, प्रणय से उम्मीद थी कि वो जो है अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जो खेल देखने को मिला कि 26 वर्षीय टोमा पहले खिलाड़ी हैं जो पुरुषों के सिंगल्स राउंड में 16 के राउंड में पहुंचे, और उन्होंने 21-19, 21-16, तो स्कोर लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगता है कि कांटे की टक्कर हुई। जब दो अंकों से ही जहां जीत का फैसला हो जाता है तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि प्रणय को बहुत जबरदस्त एक धक्का लगेगा, क्योंकि पोपोव के सामने उनको उम्मीद थी कि वो अच्छा कर पाएंगे, और एक और फर्स्ट राउंड एग्जिट जब आपका पहले राउंड में जब आप बाहर हो जाते हैं तो मनोबल काफी टूट जाता है।
और एक जबरदस्त मुकाबला इस समय महिला सिंगल्स में चल रहा है। विश्व की 28वें नंबर की खिलाड़ी मालविका बंसोड़ इस समय खेल रही है सिंगापुर की योजिया मिनसे और बहुत टफ फाइट चल रही है। पहला गेम मालविका ने जीता 21-13 से, उसके बाद दूसरा गेम गवाया 21-10 से और तीसरे गेम में वापसी कर रही है 12-9 से, जो है इस समय वो गेम चल रहा है तीसरा वाला।
मालविका जिस तरह से खेल रही है, मुझे लगता है कि वो ये मैच जीत जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रही हैं और बिल्कुल ओपोनेंट को परेशान किए हुए हैं, चाहे नेट्स हैं चाहे वो, मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो उनका उनके शॉट्स हैं और जिस तरह से वो रिटर्न्स हैं उनके सामने, जो उनके एक्शन हैं वो क्लियरली शो करते हैं, स्पष्ट रूप से ये दिखाते हैं कि उनमें काफी दमखम है और बहुत अच्छे से खेल रही हैं।
जी, आज महिला डबल्स में तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी खेलेगी। मिक्स डबल्स में हमें हार का सामना करना पड़ा, सतीश कुमार करुणाकर और आद्या वरियात को हार का सामना करना पड़ा। अभी आगे की चुनौती देखें अगर मलय जी, तो यहां अभी पीवी सिंधु का नाम है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है जिन्हें सातवीं वरीयता दी गई है, और काफी मुकाबले अभी हैं और काफी खिलाड़ी हैं अभी मैदान में हमारे।
देखिए, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप ना शशांक, सबसे पुरानी प्रतियोगिता है बैडमिंटन की, और रैंकी रेड्डी और शेट्टी की जो जोड़ी है ये एकमात्र जो कहा जाए कि सीडेड इंडियन प्लेयर्स थे वहां पे, और उनसे काफी उम्मीद है क्योंकि उनकी जब शुरुआत होगी डेनमार्क के खिलाड़ियों के साथ मैच होगा, तो उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो उनका जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा और मलेशिया के जो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है उनसे होगा, तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतने आसानी नहीं होगी उनको आगे बढ़ने में। मगर ये वो खिलाड़ी हैं जो अनेक टूर्नामेंट जीत चुके हैं, इनके पास जितनी ट्रॉफियां हैं उनकी गिनती इनको खुद ही नहीं पता, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी मुकाबला अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अचानक से रैंकी रेड्डी और शेट्टी की जो जोड़ी है वो अब छाई हुई नहीं है दुनिया के बैडमिंटन मंच पर, तो ये अब देखना होगा कि किस तरह से ये वापसी करते हैं।
पीवी सिंधु के लिए हम क्या देख रहे हैं, पीवी सिंधु के मुकाबले कल से शुरू होंगे, वहां हम क्या उम्मीदें रखें?
देखिए, पीवी सिंधु के लिए यही मौका है ये सिद्ध करने का कि चोट से उबर पाने के बाद वो एक बार फिर उसी तरह से उनकी गर्जना सुनने को मिलेगी बैडमिंटन कोर्ट पर, जैसे कि हम पहले से उनसे अपेक्षा करते आ रहे हैं। उनके खेल में गिरावट आई है, इस बात में कोई शक नहीं, और कई खेल समीक्षकों ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें अब खेल से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं और संन्यास लेते हैं तो उस समय जब आप जाते हैं तो आपको उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर आपने विश्व चैंपियनशिप में, ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं, एक एक नहीं दो दो, तो ऐसे में अगर आप एक बहुत ही जो शीर्ष का स्थान होता है उससे गिर के नीचे जब आती हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि पीवी सिंधु को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ कुछ ये बात याद आती है, जब रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा था पिछले दो हफ्तों से, तीन हफ्तों से, आप सुनते सुनते कान पक गए कि अब रोहित के लिए खेल, उनके खेल जीवन की सांध वेला आ गई, तो गोधूली वेला आ गई, और अब अचानक से रोहित फिर से सितारे बनकर आसमान पे ऐसे जगमगा रहे हैं, जुगनुओं की तरह नहीं, बिजली की कड़क की तरह नहीं, बिल्कुल सूर्य की तरह। वही बात पीवी सिंधु के साथ भी है।
हम क्रिकेट की ओर रुख करते हैं। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में दो विकेट पर 134 रन बना लिए हैं, और मुंबई ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो मुंबई के लिए कहीं ना कहीं ये मैच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर वो जीतते हैं तो टॉप में पहुंचेंगे, सीधे क्वालिफाई करेंगे, हारने की सूरत में इन्हें एलिमिनेटर खेलने की जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल, देखिए जब दो ऐसा कोई मैच होता है जिसमें एक एक टीम जीते ना जीते दूसरे का खेल बिगाड़ दे, तो ये बड़ा ही अद्भुत किस्म का मैच होता है। तो जो आज का 20वां मैच खेला जा रहा है, जो लीग चरण का अंतिम मैच है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच, वो उस पर दिल्ली कैपिटल्स की भी बहुत पैनी नजरें होंगी शशांक जी को, इसलिए कि स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन जाते जाते वो मुंबई का खेल बिगाड़ सकती है, और आज दिल्ली आरसीबी को सपोर्ट करेगी।
बिल्कुल, और महिला रैंकिंग की खबर हमारे पास आ रही है। आईसीसी महिला वनडे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में दीप्ति शर्मा पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति ने रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया हुआ है। और बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर है। और एक खबर हमारे पास और है राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स से। पटना में राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की 16 वर्षीय एथलीट निश्चय ने शॉटपुट में भी आज स्वर्ण पदक जीता है। डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने के एक दिन बाद ही हरियाणा के इस खिलाड़ी ने शॉटपुट में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। 16 साल के ही है निश्चय और खबरों में आना शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं।
देखिये, जब एथलेटिक्स में कोई भी उदीयमान सितारा सामने आता है तो हम सब नीरज चोपड़ा की ओर देखते हैं। ऐसा लगता था कि भारत में कोई एथलेटिक्स की दुनिया से आएगा ही नहीं, और उसके बाद जब आने शुरू हुए तो एक के बाद लोग आने शुरू हो गए एक, और हम ओलंपिक्स में भी पदक तालिका में ऊपर जाने लगे। तो जब एक 16 वर्षीय एथलीट अपने दावे पेश करता है तो पूरा देश उसको समर्थन करता है, पूरे देश को होना भी चाहिए उसके साथ, क्योंकि नई उम्मीदें जगी हैं इस वक्त भारतीय एथलीटों से।
बिल्कुल। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री की बात कर लेते हैं जो इस समय नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही है। और यहां पुरुषों की ऊंची कूद के T42 फाइनल में एकमात्र खिलाड़ी राम सिंह भाई गोविंद भाई पंडियार ने टॉप स्थान हासिल किया। पुरुष भाला फेंक में यहां सिर्फ दो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक और देवर्षि सचान ने दूसरा स्थान हासिल किया। 3 दिन की प्रतियोगिता है, 20 देशों के 250 से अधिक पैरा एथलीट शामिल हो रहे हैं। भारत पहली बार इस तरह के पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी कर रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, लेकिन टीम में खिलाड़ी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और गिने चुने खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता को आगे बढ़ाना पड़ रहा है।
देखिए, इस वक्त जो पैराथलेटिक्स की जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें जितने खिलाड़ियों को हम भेजते हैं या भेजने की कोशिश करते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पैराथलेटिक्स में जिन सुविधाओं की जरूरत होती है और जिस तरह से खिलाड़ियों को आकर्षित करने की जरूरत होती है, पैरालंपिक्स में आप देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टीम बिल्डअप की जाती है और ऐसे में कमी है। ये बात तय है कि भारत के पास उतने पैराथलीट्स नहीं हैं जितने होने चाहिए। दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो पैराथलीट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है
जी,
मगर आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो रहा है
जी। कुछ मैनी अल्पलाइन फॉर्मूला वन टीम के अपने रिजर्व ड्राइवर की सूची में शामिल कर लिया है।
फॉर्मूला वन के 16 मार्च से मेलबर्न में शुरू होने वाले नए सत्र से ये खबर आई है। कुछ फॉर्मूला टू में प्रतिस्पर्धा करते हैं जो फॉर्मूला वन की एक फीडर सीरीज है। बेंगलुरु के रहने वाले 24 वर्षीय कुश को अक्टूबर 2023 में एल्पाइन ने अपने जूनियर ड्राइवर कार्यक्रम में शामिल किया था। एल्पाइन ने कुश के अलावा जिन अन्य खिलाड़ियों को अपने रिजर्व ड्राइवरों के पूल में रखा है उनमें फ्रैंको कोलापिंटो, पॉल एरोन और रियो हिराकावा शामिल हैं। कुश के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका लक्ष्य नरेन कार्तिकेयन और करुण चंडोक के बाद फॉर्मूला वन में प्रतिस्पर्धा करने वाला तीसरा भारतीय बनना है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
तो कुछ अभी रिजर्व सूची में आए हैं, आगे लगता है आपको कि ड्राइवर बन पाएंगे वो तीसरे ड्राइवर भारतीय?
बिल्कुल, अगर आप जूलियन रॉस की बात सुने जो अल्पाइन एकेडमी के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि कुश ने हमारी टीम को इतना इम्प्रेस किया है क्योंकि टीपीसी में जो उनका प्रदर्शन रहा है और उसके बाद फॉर्मूला टू में जो उन्होंने रिजल्ट्स लाकर हमें दिए हैं, तो हमने सोचा कि ये 2025 में भी हम उनको बढ़ावा देते रहेंगे और बढ़ावा देना जारी रखेंगे, और एक टेस्ट ड्राइवर के रूप में और स्टैंड बाई ड्राइवर के रूप में अगर उनको फॉर्मूला वन में मौका दिया गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो उनकी उनके ड्राइवर्स का एक प्रतिभा का जो एक पूरा पूल है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये उनका कहना नहीं है, जो रिजर्व ड्राइवर्स होते हैं उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें। पॉल एरन है, रियो हिराकावा है, फ्रैंको कोलापिंटो हैं, और अब कुश का भी नाम उसमें शामिल हो गया है
जी। और चलते चलते हम बता दें कि खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि पहलवानों के बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटा दिया गया है और जल्दी ही विश्व चैंपियन और एशियाई चैंपियनशिप में खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। मलय जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। कुश मैनी अल्पलाइन फार्मूला वन टीम के रिजर्व ड्राइवर की सूची में शामिल हो चुके हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई और जो मालविका बंसोड़ का मैच चल रहा है उसमें आखिरी गेम में अभी 20-16 से मालविका आगे चल रही है। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभरात्रि।